नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित अंतर्राज्यीय बस अड्डा से हरियाणा के सोनीपत तक अंतर्राज्यीय बस सेवा का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम ने 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्त सभी दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले स्पोर्ट्स ग्राउंड विकसित करने की घोषणा की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होगा और राजधानी में कल से साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार अर्पण समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अंतर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट से हरियाणा के सोनीपत तक अंतर्राज्यीय बस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नई बसें एसी सुविधा, सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार डीटीसी बसों में ईवी बसों को शामिल कर रही है, जिससे सार्वजनिक परिवहन पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण मुक्त हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को उत्सर्जन मुक्त बनाना है, ताकि वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सके। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने भी सोनीपत के लिए 3 अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले स्पोर्ट्स ग्राउंड विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही विभिन्न खेलों की उच्च गुणवत्ता की ट्रेनिंग प्रदान करना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस योजना का विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।
इस योजना के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह तय करें कि किन स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड या ऑडिटोरियम विकसित किए जा सकते हैं। जहां बड़े मैदान उपलब्ध हैं, वहां आधुनिक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएं और जहां स्थान सीमित है वहां बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम या मिनी स्पोर्ट्स एरेना विकसित करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल अकादमियों के साथ साझेदारी भी करेगी। साथ ही क्रिकेट, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, फुटबॉल, तैराकी और अन्य खेलों की ट्रेनिंग के लिए अकादमियों के साथ एमओयू भी साइन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कदम से दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि प्रारंभिक स्तर के लिए दिल्ली के बच्चों के हुनर को निखारा जाए। प्रादेशिक समाचार के लिए दृष्टि पुन्यानी।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा। निगम द्वारा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से संचालित हैं। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार विस्फोट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। राजधानी में दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजामों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। पुलिस ने परामर्श में कहा कि रेलवे और मेट्रो स्टेशन के साथ ही एयरपोर्ट जाने वाले यात्री घर से समय पूर्व निकलें। परामर्श में यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्री मेट्रो रेल के लिए 20 मिनट, भारतीय रेल के लिए कम से कम 1 घंटा पहले और हवाई यात्रा के लिए कम से कम 3 घंटा पहले घर से निकलें। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर इलाके में आज सुबह एक बस का टायर फटने से हुई तेज धमाके जैसी आवाज से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सुबह लगभग 9:18 पर इसकी सूचना मिली। 3 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि घटनास्थल पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्त सभी दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आज निगम महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह की अध्यक्षता में हुई निगम की साधारण सभा की बैठक में लिया गया। बैठक में 360 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 5100 मीट्रिक टन प्रतिदिन की निस्तारण क्षमता वाले 4 नए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। श्री सिंह ने बताया कि ये सभी संयंत्र लगभग 6 महीनों के भीतर काम करना शुरू कर देंगे, जिसके बाद लैंडफिल साइट पर कचरे में कमी आएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में महामारी की तैयारी और आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी वेबसाइट का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि समय पर जन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के लिए किसी प्रकार की महामारी के मामले में तीव्र जांच और अध्ययन के लिए इस प्रकार की साइट का एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिनिधि सुश्री पेडेन और एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास उपस्थित थे। डॉक्टर एम श्रीनिवास ने बताया कि ये साइट बिना महामारी वाले समय में भी कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि साइट ये सुनिश्चित करेगी कि व्यवस्था मजबूत है और जरूरत के समय प्रभावशाली ढंग से काम करने के लिए तैयार है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षय रोग टीबी के उन्मूलन में मिली सफलता की प्रशंसा की है। उन्होंने इसे उल्लेखनीय प्रगति बताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2015 से टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। ये प्रतिशत इस रोग की वैश्विक गिरावट दर से लगभग 2 गुना है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक ने आज फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता अपलोड करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक रिपोर्ट।
नोटिस में कहा गया है कि ये विश्वविद्यालय ना तो मान्यता प्राप्त है और न ही मूल्यांकन और प्रत्यायन के साइकिल एक के लिए स्वेच्छा से शामिल है। नोटिस में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का ये एक प्रयास है जो परिसर में 3 कॉलेज चला रहा है। परिषद ने कहा कि ये जानकारी पूरी तरह से गलत है और अभिभावकों, विद्यार्थियों तथा हितधारकों को गुमराह कर रही है। परिषद ने विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अथवा किसी भी अन्य दस्तावेज से मान्यता विवरण हटाने का निर्देश दिया है। परिषद ने विश्वविद्यालय से नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता को 10 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसके लगभग 3 करोड़ रुपए के लंबित बिलों के भुगतान के लिए 25 लाख रुपए से अधिक के अनुचित लाभ की मांग की थी। सीबीआई ने नजफगढ़ क्षेत्र के नगर निगम में कार्यरत कार्यकारी अभियंता, सहायक कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई को आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकदी, आभूषण और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार महिला पर पहले से एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों सहित कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इस बार मेले में बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं। वहीं मेले का विशेष राज्य झारखंड है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मेले में देश के सभी राज्यों सहित 60 से अधिक मंत्रालय शामिल होंगे।
14 दिवसीय इस मेले में संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और मिस्र सहित 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। यह व्यापार मेला घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक प्रमुख मंच प्रदान करता है, जिसमें व्यापार से व्यवसाय और व्यवसाय से उपभोक्ता जुड़ाव को बढ़ावा दिया जाता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय संवर्धन व्यापार संगठन ITPO के कार्यकारी निदेशक प्रेमजीत लाल ने बताया है कि लगभग 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही 60 से अधिक मंत्रालय इस मेले में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा लगभग 3,500 प्रदर्शकों के इस बार मेले में भाग लेने की उम्मीद है।
ये हमारा 44वां संस्करण है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का, जिसमें इस करीब स्टेट 60 से ज्यादा हमारे मंत्रालय इसमें भाग ले रहे हैं और 10 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी इसमें शामिल होंगे। 3,500 से ज्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जीबिटर आएंगे, और जैसा कि पिछले साल हमारे 17-18 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया था, तो उससे ज्यादा ही लोगों को हम इस बार अपेक्षा कर रहे हैं कि ये आंकड़ा करीब 20 लाख तक पहुंचने की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो मुख्य थीम है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, को यहाँ प्रदर्शित करने के लिए एक कोशिश है कि विभिन्न जो आर्टिजन आते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, MSME स्टार्टअप, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे।
मेले में आगंतुकों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए मेला परिसर में प्राथमिक चिकित्सा बूथ स्थापित किए गए हैं और तत्काल सहायता के लिए एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। मेले के शुरुआती 5 दिन व्यापार श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं, वहीं आम जनता के लिए मेला 19 तारीख से खुलेगा। मेले में टिकट की दर पिछले वर्ष की तरह व्यावसायिक दिनों के दौरान 500 रुपए निर्धारित की गई है। सामान्य दिनों में टिकट की दर वयस्कों के लिए 80 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए तय की गई है। वहीं छुट्टी वाले दिन वयस्कों के लिए टिकट की दर 150 रुपए और बच्चों के लिए 60 रुपए है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए मेले में प्रवेश निशुल्क है। आगंतुक ITPO की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा 55 मेट्रो स्टेशनों और दिल्ली मेट्रो के सारथी ऐप के माध्यम से टिकट खरीद सकते हैं। मेला सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा, हालांकि आगंतुक शाम 5:30 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान के साथ अमन यादव, दिल्ली।
राजधानी में कल से साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 अर्पण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये 2 दिवसीय आयोजन दिल्ली के तानसेन मार्ग स्थित त्रिवेणी कला संगम भवन में शाम 5 बजे से होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बाल साहित्य की विधा में ये वार्षिक पुरस्कार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक प्रदान करेंगे। विजेताओं को एक कांस्य पट्टिका के साथ 50,000 रुपये का चेक भी दिया जाएगा। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय कल से अक्षर महोत्सव 2025 का आयोजन करेगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव में 100 से अधिक सुलेखन कलाकृतियों की एक भव्य प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अच्युत पल्लव और महेंद्र पटेल जैसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा कई कार्यशालाएं भी इसमें शामिल होंगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज राजधानी में स्थित भलसवा लैंडफिल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भलसवा लैंडफिल सहित अन्य लैंडफिल्स को प्रदूषण हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है।
दिल्ली के हर बॉर्डर पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो दिल्ली में प्रदूषण का कारण है, तो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सके, ये हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो, यहाँ के आसपास वाटर स्प्रिंकलर की संख्या बढ़ाई जाए और जो नया कूड़ा यहाँ आ रहा है उसको प्रतिदिन यहाँ खत्म करने के लिए, ताकि ये पहाड़ जल्द से जल्द खत्म हो, उसको इवैल्यूएट करने के लिए मैं यहाँ हूँ। हम इसे बहुत जल्द खत्म करेंगे। इसके माध्यम से जो प्रदूषण में योगदान हो रहा है उसको कंट्रोल करने के भी उपायों पर चर्चा करेंगे।
राजधानी में आज दिन के समय मौसम साफ रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 407 दर्ज किया गया, जो वायु की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र ने वित्त अधिनियम 2025 के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि के लाभ वापस ले लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित अंतर्राज्यीय बस अड्डा से हरियाणा के सोनीपत तक अंतर्राज्यीय बस सेवा का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले स्पोर्ट्स ग्राउंड विकसित करने की घोषणा की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होगा। और राजधानी में कल से साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार अर्पण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।